श्री वाल्मीकि भक्ति वेदांत स्वामी एक्सीडेंटली एक बार के समाज के एक्चुअली परफेक्ट नेम 1936-35 प्रभुपाद के स्पीच इन बॉम्बे पब्लिस्ट एवरी व्यास पूजा बुक प्रभुपाद कोई personal calamity We have to do the Siddhanta Saraswati Maharaj. That the personality of God is not impersonal, he is personal. He is a form. He is a form, he is a beauty, he speaks, he talks, he dances, he devotees. So he is personal. So it was proved that absolutely Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj whoever came to see him to take the Gopal offer in court to everybody who came. Gopal told us later on, when other devotees would hear the bell, the Guru Vanati, Prabhupada would sit next to Bhaktisiddhanta and hear the philosophy. So, one day Bhaktisiddhanta marked, this Abhay Babu is going to be a very good teacher because he is very good here, this one. Everybody will get up and go to the Indian. Prabhupada ka ki Guru Maharaj ने नोटिस किया कि ये जाता नहीं है बैठा रहता है सुनता रहता है तो क्वालिटी ऑफ भक्ति शास्त्री इज टू हियर मोर एंड मोर प्रणाम कीर्तनम This is the nine fold process. Pranam Kirtanam Vishnu, Bhadasaran, 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 So, Shravanam, Krishna Bhakti Nitya Siddha, Sadhya Kavodhavai, Pranadi Siddha Chitta Kare Yoga. Krishna Bhakti is there in everybody's heart. It is not to be manufactured. But When you apply bhakti in your life, you perform bhakti, that begins with shravanam. First, think about what is shravanam. We heard Prabhupada, we heard his book, we heard his devotees. And then we can become just like I. In Detroit, I took the Mangeshkar's Bhagavad Gita. somebody gave it. So devotees say, this is a professional singer. We don't hear this. We only hear it from devotees. I say, this is this. You see what that means? What would she say? So I am glad that I was devoted. At that point, I felt a little bad. But later on, I realized you are right and I am wrong. So Prabhupada says that when he met Bhaktisiddhanta first time, Bhaktisiddhanta said, why don't you preach all over the world in English language and educate them? Prabhupada said that we are dependent. We are not gulam. We are not gulam. We are not gulam. So Bhaktisiddhanta ne kaha, Azadi aur Ghulami is shareer ki hai. Atma ke nahi. Atma se sab log ghulam hai. Only enlightened soul is really there. And enlightened you can become by getting this upon it. Bhagavad Gita. Prabhupada wrote to Mahatma Gandhi in 1948, just a month before he passed away. He said that now you are struggling for independence, you have got independence. And you are always working around with Bhagavad Gita. So now you please renounce everything. This Bhagavad Gita. If you don't do, you will meet ignoble death. You will meet very inauspicious death. You don't do anything. And one table, I'm very sorry. Of course, Mahatma Gandhi ने इस पड़ाव वाले नहीं लेटर बांगल Mahatma Gandhi ने लिखा था सुधा पटेल ने लिखा था ना तो Prabhupada he relentlessly preached खाली रूम था या बड़ा हो गया एक बार मौसम में उन्होंने तो ड्यूटी लोग कोशिश किया इंडियन स्कूल बनाने के लिए कॉलेज स्कूल बनाने के लिए प्रोफेसर स्कूल बनाने के लिए लेकिन कोई आया नहीं तो ड्यूटी से प्रभावी सॉरी कम Prabhupada said, no, you tried your best. But there were some very important personalities there. Narada Muni, Sudhir Goswami, Hanumanji, they were great people. Mahatma was present. So, I did not feel anything missing. He would give his whole lecture whether it is 5 people or 10 people. So Bhakti Shastri is a basic characteristic of Bhakti. Thus, Srimad Bhagavatam is said, Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Parayatra. Nanati Ashu Viragya, Gyanam Shadayatuva. When you engage in Vasudeva's bhakti, then first thing that produces người con dâu gian người này, người bái con dâu gian người này, người bái con dâu một cái, so foolish, foolish at this, like a basic knowledge, Bodhisattva is basic knowledge course, right? He wanted, he wrote in letters that I want all the devotees to be Bhakti Vaibhava and Bhakti Vedanta.
We are in the first stage. We have to go more. Only satisfied with Bhakti Sastri.
Not about the Vedanta. Actually, when I joined, I remember, every devotee knew two shows. One of them. I was yesterday, my doctor,
I am going to go to the hospital.
जब मेरे शरीर के प्राण पंच महाभूत में मिल जाएंगे, जब मेरा जीवन का अंत आएगा, तो हे भगवान, तुम्हें जो कुछ क्या है, भैया So whatever you contribute or endeavor, be remembered by Krishna. And I hope you all become Bhakti Vedantas and the life becomes existent. Actually, Krishna consciousness is simple for the simple and difficult for the wicked. Somebody used to say, simple for the simple. If we read 108 Upanishads and other literatures, Ashtavakra Gita, Yoga Sistya, तो हमको कुछ पता भी नहीं चलेगा. मेजोरिटी 90% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आई एम पर्सनल दे ऑल फॉलो शुक्राचार्य. शुक्राचार्य शरीर भाष्य इतने महाप्रभु से शुक्राचार्य वेदांत तो व्यास देव का सूत्र है, लेकिन उसका जो शंकराचार्य भाष्य सुन लिया उसको सरना हो गया. हमारे मायावादी भाष्य सुनने वाले सरना तो शंकराचार्य भाष्य थोड़ा भी समझ में आएगा. एक जो भाष्य इसके अवस्था में बिल्कुल समझ में आएगा. तो ये लोग विद्यालय में फॉलो करते हैं तो इजी है. सुनभाव स्टोरी फॉर्म और मेरे इजी इंस्ट्रक्शन स्टडी. यू शुड बी हैप्पी दे स्टडी भगवान सुनभाव
I wish you all good luck.
एक चीज मैं आप जैसे आपको थोड़ा सा बताया था, मैं फिर से आपको एक बार याद कराना चाहता हूँ
कि प्रभुपाद के द्वारा जो गुजरात विश्वचंद्र को दिया था, तो ये प्रभु जी का गुरुदत्त देश है गुजरात, और यहाँ पर उन्होंने इतने समय में इतने सारे मंदिर, इतने सारे भक्त, ये पूरा स्थापना इन्होंने प्रभु जी ने अपनी मेहनत से किया है। प्रभुपाद के सहायता से प्रभुपाद ने स्वयं प्रस्तुति को सहायता की थी सब जगह। अहमदाबाद में प्रस्तुति प्रभुपाद उनके साथ जाते थे रहने का स्थान, किराए का स्थान लेने के लिए प्रभुपाद स्वयं गए उनके साथ। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा, और उनकी ही कृपा से आज ये भक्ति शास्त्री कोर्स, जैसे मैंने बताया, अहमदाबाद इज द फर्स्ट सेंटर इन गुजरात टुडे दैट वो ऑफिशियली ये एग्जामिनेशन सेंटर के रूप में
पूर्ण नहीं है कि मैं इतना साल लास्ट आया और कुछ करने की कोशिश की,
हम रिक्वेस्ट करते हैं इस सर्वमान्य प्रभु से वो आशीर्वाद दे, साथ में भक्ति शास्त्री और शिवपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने के भविष्य में और जो महिमा है वो भी हमें समझाए संक्षेप में। विशेष करके ये हमारा सौभाग्य है कि सार्वभौम प्रभु पीछे कई सालों से वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में भक्ति शास्त्री कोर्स और भक्ति वैभव कोर्स कई सालों से पढ़ाते हैं, और इज वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी बहुत पसंद करते हैं सब जगह। वी आर वेरी गुड फॉर्चून, इनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, कल उन्होंने अस्पताल से आए हैं दोपहर को, एनजीओ प्लास्टिक करवा करके कल का शाम को आए हैं ठीक होकर। मैं कल ऐसे ही फोन किया था हेल्थ के लिए, और मैंने कहा कि कल इस तरह से होगा तो बोले ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए आऊंगा। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम।
विष्णुपादाय
कृष्णप्रेष्ठाय
भूतले
श्रीमते भक्तिवेदान्त
स्वामी
नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कदालिये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय
कृष्ण
प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण
चैतन्यामने
गौराश्चैत्ये नमः
चैतन्यमनोभीष्टम्
स्थापितम् येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यम् ददाति स्वपदान्तिकम् जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द यद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृन्द वांशकल्पत्रोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्री प्रभुपाद जी पर कृपा से परम पूज्य यीशु मसीह आनंद मार प्रभु जी के तत्वदान में उनके निर्देश और निरीक्षण में विश्वरूप प्रभु जी के सानिध्य में आपको भक्ति शास्त्री करने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है अहमदाबाद में, इसके लिए असल में बहुत बहुत आभार प्रकट आपको करना चाहिए अभिनंदन प्रभु का और धन्यवाद करना चाहिए विश्वरूप प्राप्त उन्होंने आपके यहाँ नहीं तो मायापुर और वृंदावन जाके भक्ति शास्त्री करने का साधन था जो आपको यहाँ श्री राधा गोविंद भाव में उपलब्ध है। अब भक्ति शास्त्री आप जो करने जा रहे हैं आप समझे कोई डिग्री है जैसे बी ए एम ए करते हैं, ऐसा नहीं। भक्ति के शास्त्र पढ़ने हैं। भक्ति शास्त्री का मतलब भक्ति के शास्त्र, और भक्ति का अर्थ है भगवान और भक्त और दोनों के बीच में होने वाला आदान प्रदान, उसको कहते हैं भक्ति। तो भगवान क्या है इसके लिए दो शास्त्र पढ़ाते हैं, भगवद गीता और ईशोपनिषद, जिसमें ये तत्व समझाया गया है कि भगवान है क्या। और दो शास्त्र पढ़ाने विद्याए से हैं कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, वह भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेश अमृत। तो एक दो शास्त्र है सिद्धांत में भगवान क्या है उसको समझना, और दो शास्त्र है कि भक्ति कैसे की जाती है वो समझना। तो ये दो चीजें हमको करनी है, भक्ति हमको करनी है, भगवान को हमको समझना है। और क्यों कर समझना है, समझना इसलिए है कि दूसरों को समझाना है। और भक्ति क्यों करनी है, क्योंकि हमारा अपना उद्धार करना है। समझना है दूसरों को समझाने के लिए, करना है अपना जीवन का उद्धार उत्पन्न हो। और भक्ति शास्त्री पूरे होने के बाद आपको भक्ति के शास्त्रों के ऊपर स्वयं कैसे चलना है और दूसरों को कैसे प्रेरणा देनी है, ये आपका उद्देश्य है। स्वयं कैसे भक्ति के शास्त्रों के अनुसार चले और दूसरों को कैसे प्रेरणा दे ताकि वो भक्ति कर सके। तो चार ये शास्त्रों के साथ पांचवा वृंदावन में हम पढ़ाते हैं पूजा पद्धति, भगवान की पूजा पद्धति डीटी वर्षे, तो उसके भी कुछ क्लासेस के यहाँ ठाकुर जी पूजा कैसे करनी है, आरती कैसे करनी है, भोग कैसे लगाना है, ताकि जो भक्ति के अंदर जो पांच अंग भक्ति में मुख्य एक अर्चना भी है भगवान की पूजा है तो वो भी यहां सिखाया जाए। जैसे पुस्तक लेके आप घर में भी पढ़ सकते हैं लेकिन घर में क्लासरूम का वातावरण नहीं होता है, कक्षा का वातावरण नहीं होता क्योंकि यहां सब पढ़ने वाले आते हैं तो यहां पढ़ने वाला माहौल बनता है, वातावरण बनता है एक बार। दूसरा स्वयं किताब से पढ़ने से 25% समझ में आता है, 75% नहीं आता। जब कोई पढ़ाता है तो 50% समझ में आता है क्योंकि 50 उसके अनुभव से वो समझाता है और वो पढ़ा ले उसके बाद जाके वापस किताब पढ़ोगे तो 75% समझ में आए, बाकी 25% सारी जिंदगी अनुभव से आस्ते आस्ते आए। ये इसका फार्मूला, इसका मतलब है पहले आपको भक्ति शास्त्री में आना है तो घर से जितना पढ़ने के लिए कहा जाए वो पढ़ के आओ, तो चारणा आप घर से पढ़ के आए 25%। फिर जब पढ़ा रहे हैं तो चारणा वो आपका काम देगा और चारणा उसके ऊपर पढ़ाने वाले का जो अनुभव है वो आपको मिलेगा। ये दोनों इकट्ठा करके घर जाके वापस उसी दिन जितना पढ़ाया है उतना अगर पढ़ोगे तो 75% समझ में आएगा क्योंकि 25% और भी बातें जो लिखी हुई है वो आपको उन दोनों के आधार पर समझ में, और एक दिन छोड़ के अगर दूसरे दिन पढ़ा तो 60% आएगा। और आपने कहा इम्तिहान से पहले पढ़ेंगे तो 25 का 25 ही रहेगा, 50 वो भी चला जाएगा। ये इसका फार्मूला है और जब 75% समझ में आ जाए तो आधा घंटा 20 मिनट निकाल कर एक अलग कापी है उसमें लिख दो कि आज हमको ये समझ में आया इसका। फिर क्या है आज से 10 साल बाद वो कापी आप देखोगे तो आपको याद आएगा कि ये मैंने कुछ लिखा है मेरे को समझ में आया है, उतना वो आपका अलग अपना अनुभव। किताब में क्या लिखा वो छोड़ो, पढ़ाया क्या है वो छोड़ो, आपने क्या समझा है उतना वो कापी में लिखो कि मैंने यहां आज इतना सब ये बात समझी। तो उसके बाद एक्सपेरिमेंट करना है तो जब बाहर घूमता फिरता कोई आदमी हाथ आ जाए ना उस बोलो खेलो मालूम है ये श्लोक भगवद गीता में इसका पता है इसका अर्थ क्या है, जो आपको समझ में आया है उसके ऊपर सारा डाल उससे क्या है कि आपको होगा कॉन्फिडेंस भले वो परेशान हो लेकिन आपको क्या आपने सुना क्या आपने पढ़ा वो दूसरे और जो दूसरे को बोलना आपको अगर आ गया तो समझ लो कि आपको सब्जेक्ट आ रहा है। अगर आप समझा नहीं सके आपको सारा समझ में भी आए तो भगवत धाम जा सकते हो प्रचार नहीं कर सकते क्योंकि भाई आपको आता है तो ठीक है भगवान का आप देख रहा है लेकिन प्रचार तब करोगे जब जाके किसी को पकड़ के अब दूसरा कोई हाथ नहीं आए तो ग्रुप अपने 4-5 का दोस्तों का बना ले, अरे अपना एक छोटा ग्रुप बना ले उसमें बैठ के डिस्कस किया करो क्लास खत्म होने के बाद और क्लास शुरू होने से पहले कि आपने क्या समझा आपने क्या समझा, जो चीजें नहीं समझी वो लिख लो और वो आके टीचर से जो पढ़ाने वाले से पूछो तो आप समझो कि ये समझ में चीजें आई। तो ये आपका एक्टिव इसके पढ़ने का फार्मूला है। तो पहले पूर्व स्वाध्याय है घर से करके आना है फिर सुनना है और फिर जाके उसको दोबारा पढ़ना है और फिर एक्सपेरिमेंट करना है। हम भक्ति शास्त्री शब्द का पढ़ा रहे हैं मायापुर वालों को साथ भी पढ़ा के देखा है वृंदावन वालों के साथ भी हमारा अभी भी मानना है कि कुछ 25% प्रैक्टिकल होना चाहिए जो कहीं है नहीं अभी तक। क्या हफ्ते में 15 दिन में एक दिन संकीर्तन के ले जाना चाहिए भक्ति शास्त्री मानना कि जाओ जरा कीर्तन करो, पुस्तक वितरण करो और आपका वो स्कोर जो है वो मार्कों में काइंड अकाउंट होना चाहिए कि आपने क्या प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल होना चाहिए कुछ भाई, हम पढ़ा एक नहीं तो पहले मेरी भाषा में कहता था जो पढ़ के आया भैया जिसे वो पंडा हुआ, जो पढ़ के आया गुरु गुरु से वो गुंडा हुआ। एक पंडा हो एक गुंडा, पढ़ के आया भैया जिसे वो पंडा हुआ, वो पंडित जी हो गए बस, वो सिर्फ किताब पढ़ेगा किसी से बात नहीं करेगा, वो मिस्कान की सेवा नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा पंडित जी, और जो गुरु गुरु से वो तो फिर देखते हलता है। प्रैक्टिकल होना चाहिए इसमें, प्रैक्टिकल एक दिन 15 दिन में महीने में, और कभी आपके यानी हम वृंदावन में मानकर कभी कहते हैं आज की क्लास चल के गोवर्धन में लेंगे, तो उस वातावरण में जाके क्लास लेना जहां स्पिरिचुअल वातावरण हो। भाई कभी कछवाड़ा चले जाके उधर क्लासें कुछ करेंगे, मत समझो ऐसे कोई सब्जेक्ट ऐसा है तो जब आपका भक्ति शास्त्रीय वैभव है तो द्वारका चलेंगे 7 दिन के लिए, द्वारका की लीलाएं सारी वहीं पढ़ाएंगे ताकि देख भी सके उन चीजों को। तो थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल स्टेप ऐड करना बहुत जरूरी है, भक्तों से वो काम कराना जो करना है भक्ति शास्त्री, तो भक्त बनाना है शास्त्रों के आधार के ऊपर, मनमाने नमूने से नहीं। बाकी जो आपके एग्जाम है एक तो ओपन बुक टेस्ट होती है, वो तो आपको किताब पढ़ने के बाद लिखना है, इसका उसका एक ही उद्देश्य है ताकि आप सारा किताब पढ़ें, उसका वो कोई मतलब नहीं है। पूरा किताब पढ़ने के लिए वो रखा हुआ है कि उसमें कौन सी चीज कहाँ मिलेगी आपको, जब पढ़ेंगे तब पता लगेगा। तो फिर मैंने इतना ही और जो क्लोज बुक टेस्ट है उसमें एक तो आपकी याददाश्त, एक आपकी मेमोरी, आपको कितनी जानकारी हुई, दूसरा आप उसको कैसे जीवन में अपनाएंगे एप्लीकेशन उसको, तीसरा आपका अपना अनुभव क्या है। तो ये पढ़ाने के अंदर ये सब चीजें सिर्फ किताब तोते की तरह रखने का नहीं है, ये तो आप भी घर में पढ़ सकते हैं पूरा, लेकिन उसको कैसे कहां कब अप्लाई करना है ये जो है ये आपको जो रिटन टेस्ट है उसमें सीधा क्वेश्चन नहीं लिया लिखा जाएगा। 27वें श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी मायावाद का खंडन कैसे करते हैं, अब ये आपको प्रश्न तो दिया, लेकिन अब 27वें अध्याय का 27वें श्लोक है कौन सा, प्रभुपाद ने कैसे खंडन किया है, तो ये तो आपका अनुभव जब होगा तभी आप लिख पाएंगे, ऐसे नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए शुरू कीजिए इसको, और ऐसे इस भाव से शुरू कीजिए कि हमको समझना है, समझना है, और समझने के बाद इसको अप्लाई करना है, मतलब अनुभव में हमें प्रैक्टिस में लाना है, प्रैक्टिस में इसको लाना है, और फिर एग्जाम्पलरी हमको खुद को बनना है। तो 3 स्टेज हो गए, समझना, अभ्यास में लाना और स्वयं वैसे आचरण करना। तो ये 3 स्टेज अगर आप समझ भक्ति शास्त्र में ये 3 स्टेज आपके लिए है, समझना, अप्लाई करना और प्रैक्टिस करना। आप किताब समझ जाए लेकिन अप्लाई नहीं करें तो भी फायदा नहीं, और आचरण में नहीं लाए तो भी फायदा नहीं। किताब पढ़ने से पास हो जाएंगे लेकिन आचरण में नहीं लाएंगे तो भक्त नहीं बनेंगे, और अप्लाई नहीं करेंगे तो प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो कुछ उसके सिद्धांतों से समझिए। तो पहला फार्मूला याद रखिए, घर से जरूर पढ़ती आए, जितना पढ़ाना है उतना पढ़ती आए, फिर सुनिए। प्राय सुनने के समय लिखने का काम ज्यादा लोग करते हैं, उसको बुरा तो नहीं कहना चाहिए, उसमें सुनना काफी कुछ रह जाता है। कोई टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल कोई ऐसी चीज है तो चलो वो भी नीचे कॉपी के बगैर देके ऐसे लिख दो, क्लास खत्म हो उसके बाद दो चार बच्चे होते कहो कि आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा गया, तब बैठ के लिखो, तब बैठ के लिखोगे तो जरा ध्यान से लिखोगे, नहीं तो एक ही टांग और एक ही पूंछ साथ हो जाएगी, जल्दी जल्दी लिखोगे तो कहोगे इसके बाद क्या कहा था, वो बीच वाला तो है नहीं। आदमी खाना खाया, कुत्ता मर गया तो लिखेंगे आदमी कुत्ता खाया मर गया, बीच में खाना गुम हो जाए तो वो घर जाके पढ़ेंगे तो माना ही कुछ और हो जाएगी, उसकी माना ही बदल जाएगी। इसलिए जब पढ़ाया जाए तब केवल सुन, और स्लाइड आदि दिखाई जाए तब भी लिखो मत, उसके ऊपर ध्यान दो, बाद में वो सब चीजें आपको मिल जाएगी बड़ी मत। ज्यादातर उसके ऊपर काम करने से आपका कंसंट्रेशन सुनने में नहीं रहेगा, सुनने में नहीं रहेगा तो जो मेन उद्देश्य है टीचर का वो खत्म हो जाएगा। ऐसे तो आपको इसमें से निकाल के सारी स्लाइड देते घर चले जाए, उससे काम नहीं हो रहा ना, जो सुना रहे हैं उसको सुनो, क्योंकि वो अनुभव है उसका। तो लिखने का काम बाद में, तो इसमें इसमें फार्मूला बनाने में भी ऐसे रखना चाहिए कि क्लास खत्म, वैसे ऐसा होता है कि एक घंटे पौने घंटे का क्लास खत्म हो गया और उसके बाद पांच ग्रुप बना दिए और कह दिया कि अब ये टॉपिक आपसे से जो पढ़ाया है इसमें से आपस में डिस्कस करके लिखो, और फिर दो मिनट आके यहाँ एक कभी एक ग्रुप का आदमी बता दें तो वो एक प्रैक्टिकल आपका बाद में कराएं तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन पढ़ाने के समय लिखने वाला काम जो है उसमें बहुत सी चीजें मिस हो जाती, लिखना जरूर चाहिए लेकिन उसके बाद तो फ्रेश मेमोरी में बहुत सी चीजें रहती है। कोई चीज की टेक्निकल इसलिए ग्रुप एक छोटे छोटे अपने बना दीजिए चार पांच जिसके साथ नजदीक में रहते हो, ताकि कुछ चीजें आपको भूल होंगी तो उसको याद होगी, कुछ उसको भूल होगी तो आपको याद होगी, आपस में मिलकर एक ग्रुप डिस्कशन उसका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है टीचिंग का, ग्रुप डिस्कशन इम्पॉर्टेंट। और तीसरा छोटे छोटे ड्रामे कराते हैं, जो चीज आपको प्रैक्टिकल करनी है उसको ड्रामो करके जाने पाना कि भाई प्रसाद सर्विस कैसे करनी है, तो प्रसाद सर्विस या ड्रामो करके दिखाना है। जैसे प्रसाद सर्विस वाले बाल्टी में से बुरा ड्रामो कुछ निकाल के रख के आते हैं, तो ये भी दिखाना है कि ये गलत तरीका ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन ये क्यों निकाल के आते हैं तो सोचना चाहिए कि इनकी इच्छा है कि खत्म हो गए तो हमको नहीं मिलेंगे इसलिए निकाल के आए, तो क्या करना चाहिए इसके लिए, तो दूसरे ड्रामे में सुधार करके जो सेवा करने वाले उसको पहले खिला दो ताकि उसको ये डर नहीं पहले नहीं मिले। तो ये क्या, ये ड्रामा करके आपको दिखाना चाहिए कि प्रसाद सही कैसे सेवा करनी है, गलत कैसे करनी, पहले क्या देना है बाद में क्या देना है। तो ये कुछ ड्रामे भी ऐसे टाइम निकाल के करने चाहिए, जल्दी ताबड़तोड़ से किताब पूरा करना है ये नहीं, हमें प्रैक्टिकल कैसे करना है ये सीख, वैष्णव अपराध कैसे होता है, एक भक्त मंदिर में आता है नया आया है उससे कैसे बात करनी है, तो गलत कैसे करते हैं वो भी ड्रामा करके दिखाओ और सही कैसे करना चाहिए वो भी ड्रामा करके दिखाओ। जैसे भक्तों के लक्षणों में है ना भाई, तीन प्रकार के भक्त हैं, उत्तम है मध्यम है कनिष्ठ, उनसे व्यवहार कैसे करना है ड्रामा करके दिखाओ, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, किससे नहीं करना चाहिए, किसको सिर्फ प्रणाम करना चाहिए, तो ये सारा आपके टीचिंग में आएगा।
तो इसलिए छोटे छोटे ग्रुप पहले से आप दिमाग में बना के रखो ना, तो आप सही माना में इसको समझने में बहुत लाभ होगा। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है?
हमारे है इसके सार्वभौमिक प्रभु के, उन्होंने
उनका अपना अनुभव इतने सालों का उन्होंने बताया, और इस कोर्स का जो मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए वो उन्होंने संक्षिप्त में वर्णन करके दिखाया। तो अगर उनके अनुभव का उपयोग करके उन्होंने बताए हुए जो गाइडलाइन है अब उसको फॉलो करेंगे तो ये भक्ति शास्त्री कोर्स जो है वो आपको एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो जाएगा आपकी कृष्ण भावना रोज में, क्योंकि उससे कई चीज ऐसी होगी कि आपका आचरण बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपके लक्ष्य बदल जाएंगे। तो इस तरह से इस कोर्स का पूरा लाभ हम उठा सकते हैं। और जैसे कृष्ण जी ने दोनों बताया था, ये तो जो शुरुआत है, इसके आगे और चेंज कभी इसलिए है भक्ति वैभव जिसका श्रीमद भागवत होता है आधा सिक्स कैंटो तक, तो भक्ति वेदांत उसमें आप बाकी के सिक्स कैंटो है, और उसके बाद होता है भक्ति सार्वभौम जिसका चीजें वेदांत भी होता है। कभी ये हमारा सौभाग्य है कि सार्वभौम प्रभु भक्ति शास्त्री तो पढ़ाते ही है, भक्ति वैभव भी पढ़ाते हैं, तो जब भी हमें नेक्स्ट भक्ति वैभव होगा तो सार्वभौम प्रभु हमें पढ़ाने के रेडी है हमेशा। और ये हमारा सौभाग्य है कि अहमदाबाद में उनका अक्सर आना होता है, तो भक्ति शास्त्री के लेक्चर्स उन्होंने पहले भी कई बार दिए हुए हैं, लेकिन हम विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप अहमदाबाद में हो और आपको समय अनुकूल हो तो आप भक्ति शास्त्री के लेक्चर्स अवश्य लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सार्वभौम प्रभु।